पृष्ठ संख्या 148, जापान तथा विश्व शांति 1922 से 1931। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, वाशिंगटन सम्मेलन ने जापान और अमेरिका के बीच तनाव को कम करने, नौसेना के आकार को नियमित करने और जापान की इच्छानुरूप प्रशांत प्रदेशों के विवादों का निपटारा करने में योग दिया। यह जापान की विदेश नीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण युग था। उसे पश्चिमी राष्ट्रों की नौसैनिक शक्ति से भी निकट भविष्य में कोई खतरा न था और राष्ट्रसंघ की परिषद का अस्थायी सदस्य होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी सुनिश्चित एवं सम्माननीय हैसियत थी। सन 1930 में लंदन में हुए आयुध सम्मेलन में जापान ने वाशिंगटन में स्वीकृत अनुपात से कुछ अधिक नौशक्ति रखने के अधिकार की मांग की, जिससे स्पष्ट ही व्यय में अत्यधिक वृद्धि की संभावना थी। इसके अलावा वह कुछ ऐसे युद्ध पोतों का निर्माण कर रहा था जिन पर संधि द्वारा कोई प्रतिबंध तो नहीं था, लेकिन जो संधि में निहित भावना का अवश्य उल्लंघन करता था, किंतु अन्य देशों के आग्रह पर तथा अपनी नौसेना के कुछ अधिकारियों के विरोध के बावजूद जापान समझौता कर लेने पर सहमत हो गया, जिसके अनुसार उसे अपनी पहली मांगों में काफ़ी कमी करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त जापान पेरिस करार का भी सदस्य था, जिसमें राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध का परित्याग किया गया था। औपचारिक अनुसमर्थन में उसे कुछ विलंब हो गया, लेकिन अंततः यह कार्य संपन्न हो गया। इस समय सरकार पर उदार दल का नियंत्रण था और वह राष्ट्रवादियों के विरोध को काबू करने में समर्थ था, लेकिन लंदन समझौते की स्वीकृति सैन्यवादियों की आधारभूत मान्यताओं को एक चुनौती थी। इस चुनौती का मुकाबला उन्होंने असख्त विदेश नीति का विरोध करते हुए आत्महित एवं देशभक्ति की दलीलों से किया। सैनिक नेताओं का प्रोत्साहन पाकर अनेक देशभक्त संस्थाओं ने इन युक्तियों का प्रसार किया। एशिया में जापानियों का पुनः विस्तार, मांचुकुओं की स्थापना। 1931 के आरंभ में जापान की विदेश नीति में जो शांतिपूर्ण प्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित होती थी, वह अकस्मात समाप्त हो गई। सन 1931 के ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में मंचूरिया में संघर्ष छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप महाद्वीप पर जापान का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश पश्चिमी देशों के साथ जापान के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, चीन में उत्तरोत्तर विकसित राष्ट्रीयता की भावना का उद्देश्य मंचूरिया में रूस और जापान के विस्तार को रोकना था। उस क्षेत्र में विद्यमान विदेशी शक्तियों के बीच समय समय पर संघर्ष छिड़ते रहना स्वाभाविक था। एक को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए देर अबेर उस प्रदेश का परित्याग करना निश्चित था। सन 1929 में चीन ने रूस की गतिविधियों को और अधिक सीमित करने का असफल प्रयत्न किया। रेलमार्ग और एक नए बंदरगाह का निर्माण कर चीनी एक ऐसे परिवहन व्यवस्था का निर्माण कर रहे थे जिससे उन्हें जापानियों द्वारा अधिकृत दक्षिण मंचूरियाई रेलमार्ग और देरेन पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। जापानियों ने इसका विरोध किया। सन 1931 के ग्रीष्म ऋतु में मंचूरिया एवं कोरिया में चीनियों तथा कोरियावासियों के बीच मुठभेड़ हुई। सितंबर 1931 में अचानक जापानियों ने हमला कर दिया। मुकदेन के निकट दक्षिण मंचूरियाई रेलमार्ग पर एक विस्फोट इस हमले का पूर्व संकेत था। कुछ ही सप्ताह में चांग शुए लियांग की सेनाओं के पांव उखड़ गए और वे मंचूरिया छोड़कर भाग गई। चांग शुए लियांग के शासन के स्थान पर जापानियों ने अपने संरक्षण में स्थानीय अधिकारियों को ही सरकार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1932 के वसंत में मांचुकुओ नाम से पूरे देश के लिए एक शासन की स्थापना की गई। अंतिम मांचू राजा पुई को इस शासन का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1934 में इस नए राज्य को साम्राज्य की संज्ञा प्रदान की गई। इस शासन ने जापान के साथ घनिष्ठ मैत्री स्थापित की। प्रशासन में जापानी सलाहकारों का बहुत बड़ा हाथ था। नीति का निर्धारण मांचूकुओ में जापानी राजदूत की हैसियत से क्वांतुंग सेना के प्रधान सेनापति के निर्देश पर होता था। चीन मंचूरिया के प्रदेश को खोकर चुप नहीं बैठा रहा। उसने इस मामले को राष्ट्रसंघ में उठाया। राष्ट्रसंघ किंग कर्तव्य विमूढ़ था, क्योंकि सुदूर पूर्व में अपने निर्णयों को क्रियान्वित कराने के लिए वह मुख्यतः ब्रिटेन पर निर्भर था। ब्रिटेन किसी भी ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार न था जिससे उसे जापान के साथ युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़े। अंततः इस मामले की जांच करने तथा उपयुक्त सिफारिशें पेश करने के लिए लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। आयोग ने सामान्य रूप से जापान को दोषी ठहराया और समझौते द्वारा मामले को तय करने की सिफारिश की, जिसके लिए जापान तैयार न था। समझौते के लिए वार्ता का दौर महीनों तक चलता रहा और अंत में 1913 में जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इस बीच जनवरी 1932 में शंघाई में जापानियों और चीनियों के बीच संघर्ष की आग भड़क उठी। इस संघर्ष में नगर का कुछ भाग नष्ट भ्रष्ट हो गया। चीनियों ने इस संघर्ष में जापानियों का अप्रत्याशित रूप से कड़ा मुकाबला किया, लेकिन बाद में उन्हें हार कर वापिस लौटना पड़ा। इस विवाद के निपटारे के लिए महीनों तक चीनियों और जापानियों के बीच कोई समझौता न हो सका। यद्यपि अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य न था, लेकिन कई संधियों से आबद्ध होने के कारण वह मंचूरिया के मामले से विशेष रूप से संबद्ध था। कुछ समय तक उसने राष्ट्रसंघ को सहयोग दिया, लेकिन जनवरी 1932 में उसने स्वतंत्र रूप से सिस्टमसन सिद्धांत पेश किया। यद्यपि इस पर ब्रिटेन, फ्रांस और इटली की पूर्व सहमति प्राप्त कर ली गई थी, सिस्टमसन सिद्धांत का नामकरण अमेरिका के विदेश सचिव के नाम पर किया गया था, जिसने उसे सिद्धांत का रूप प्रदान किया था। इसके द्वारा अमेरिका ने चीन व जापान के बीच किए गए किसी भी ऐसे समझौते को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, जिससे संधि द्वारा स्वीकृत उसके अपने अधिकारों को नुकसान पहुंचाता हो। इनमें वे अधिकार भी सम्मिलित थे जिनका संबंध चीनी गणराज्य की प्रभुसत्ता, स्वाधीनता, प्रादेशिक एवं प्रशासनिक सत्यनिष्ठा अथवा पेरिस करार की संधियों और दायित्वों की विरोधी स्थिति, संधि या समझौते से था। राष्ट्रसंघ के सदस्यों तथा अमेरिका ने मांचूकुओ को औपचारिक मान्यता देने से इनकार कर दिया। सन 1938 तक केवल कुछ ही देशों ने, वह भी अनिच्छा से, इसे मान्यता प्रदान की, जिनमें सबसे पहले साल्वाडोर, उसके बाद जर्मनी तथा इटली थे। इतना होने पर भी जापान निर्भीक था। सन 1935 में कई महीनों तक समझौते की वार्ता के पश्चात टोक्यो सरकार की मध्यस्थता से मांचूकुओ ने चीन के पूर्वी रेलमार्ग पर रूसी हक खरीद लिया। इससे अब इस नए राज्य में जापान की एकमात्र ऐसा विदेशी राष्ट्र बचा रहा जिसकी वहां के मामलों में सुनवाई थी। इससे अब इस नए राज्य में जापान ही एकमात्र ऐसा विदेशी राष्ट्र बच रहा जिसकी वहां के मामलों में सुनवाई थी तथा वहां की पूंजी और संपत्ति पर कुछ अधिकार था। जापान ने अपने लाभ के लिए मांचूकुओ के विकास का कार्य हाथ में लिया। इस प्रदेश के लिए जापान ने विशाल धनराशि लगा दी। उसने रेलों का निर्माण किया तथा भारी संख्या में जापानियों को वहां आकर बसने के लिए उत्साहित करने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि अभी जापान को यहाँ कुछ ही वर्ष हुए थे, लेकिन उसे इस बात का स्पष्ट आभास मिल गया कि मांचुओं के द्वारा अपने आर्थिक समस्याओं को शीघ्र ही हल कर लेने का उसका स्वप्न पूरा नहीं हो सकेगा। मांचुकुओ प्रदेश उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा या उन पर भार स्वरूप सिद्ध होगा, यह एक विवादास्पद प्रश्न था। इस प्रदेश को प्राप्त कर उसे विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का जो वैमनस्य मोल लेना पड़ा तथा इस नए राज्य के प्रशासन को कायम रखने के लिए उसे जो भारी खर्च करना पड़ा, उनके बदले में बाजार और कच्चे माल के द्वारा प्राप्त लाभ केवल एक अंश मात्र था। मांचुकुओ की अधिकांश जनता नए शासन से असंतुष्ट बने रहे। जापानियों को डाकेजनी के वारदातों का दमन करने के लिए कठोर कार्रवाइयाँ करनी पड़ी। उन्होंने अधिकांश कृषक वर्ग के लोगों को जबरदस्ती गाँव में केंद्रित कर दिया और इस प्रकार जापानी अधिकारी ग्रामीण प्रदेश पर प्रभावकारी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित करके तथा डाकुओं को पृथक करके उन्हें भूखों मरने पर विवश कर दिया। इस कारण देश के आरक्षण का व्यय बहुत बढ़ गया।